السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم برزخ میں ہمارا سفر جاری ہے اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی سواریاں لینا چاہ رہے ہیں اور سب موجود ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جن کو سواری نہیں دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اب آپ نے اپنا سفر خود ہی کرنا ہے. اور ہم دیکھ کے بڑے حیران اور پریشان بھی ہوئے ان کی تکلیف کو دیکھ کے کہ وہ پیدل چل بھی نہیں پا رہے تھے. وہ گروہ جو ہے پیدل نہیں چل رہا تھا اور اس میں زیادہ تر خواتین تھیں, اور وہ کبھی چل رہی تھیں, کبھی بیٹھ رہی تھیں, پھر چلنا شروع کرتی تھیں, پھر کوئی دھکا سا لگتا تھا, پھر ایک طرح سے جیسے کوئی گر جاتا ہے, گر گئیں, پھر تھوڑا سا گھسٹ کے چلیں, پھر کھڑا ہونا چاہا, پھر چلنا چاہ رہی ہیں, پھر گر رہی ہیں. تو ہمیں بہت ترس بھی آیا اور پریشانی بھی ہوئی. تو ہم نے اپنے دوست سے پوچھا کہ ایک تو سب سے پہلے یہی خدا کا شکر ہے کہ علم دوست ہمارے ساتھ ہے جو ہماری رہنمائی کرتا رہا دنیا میں بھی اور اب عالم برزخ میں, کیونکہ دنیا میں ہم نے علم سے دوستی کی تھی تو آخرت میں اور عالم برزخ میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. اس نے بتایا کہ یہ وہ گروہ ہے, یہ وہ خواتین ہیں کہ ان کو جو یہ تکلیف اور پریشانی ہے وہ ان کی اپنی وجہ سے ہے, اور ان کے اوپر آسمان سے فرشتے بھی ہنس رہے ہیں, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو ہم نے پوچھا وجہ کا, اس لیے کہ انہوں نے نماز کو کھیل بنایا ہوا تھا, کھیل تماشے کی طرح نماز کو حقیر سمجھا ہوا تھا. یہ جو ہیں اپنی نماز کے واجبات کو سیکھنا اور سمجھنا نہیں چاہتی تھیں. تو ہم نے پوچھا کہ کیا یہ سزا کیا ہے, مطلب کہ یہ چل رہی ہیں, پھر بیٹھ رہی ہیں, پھر ایسا لگتا ہے کوئی دھکا دیتا ہے, پھر کھڑا ہونا چاہتی ہیں. کہا کیونکہ انہیں دنیا میں بہت اس طرح کا شوق تھا کہ یہ بیٹھ کے نماز پڑھیں, یہ کبھی علماء کرام سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھیں, رابطہ کرنے کا ذہن میں نہیں آتا تھا کہ میں اس وقت کس حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہوں اور کب مجھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. انہوں نے نماز کو کھیل بنا لیا تھا, نماز کی شکل کو خراب کر دیا تھا. انہوں نے جو خدا نے حکم دیا تھا نماز کو جس طریقے سے ادا کرنے کا, انہوں نے اس کو کھیل بنا لیا. تو ہم نے کہا فرشتے کیوں ہنس رہے ہیں ان کے اوپر, مطلب کوئی ہمیں ذہن میں آئے کہ کوئی لطیفہ تو نہیں ہو رہا, کوئی کامیڈی تو نہیں ہے, یہ تو تکلیف میں. کہا اسی لیے کہ یہ کھیل بنایا ہوا تھا انہوں نے, فرشتے اس لیے ہنس رہے ہیں کہ یہ شاپنگس پہ آرام سے جاتی تھیں, شادیوں میں آرام سے چل کے جاتی تھیں, گاڑیاں دور پارک ہوتی تھیں, چلتی بھی آتی تھیں ہال میں, شادی ہال میں, بڑے بڑے جو ہیں شاپنگ پہ جاتی تھیں, مالس جاتی تھیں, گھروں میں اگر شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی تھی تو مارکیٹ جانا ہے, ضرورت کے کام کرنے, خوب جو ہیں یہ چلتی بھی تھیں, تھکتی بھی تھیں بہرحال, مگر انرجی تھی ان کے پاس. گھر کے کام بھی سب یہ کرتی تھیں, چلتے پھرتے, کھڑے ہو کے کوکنگ بھی کر رہی ہیں, کوئی چیز گر گئی تو جھک کے اٹھا بھی رہی ہیں, مگر جب نماز کا موقع آتا تھا تو ان کی ساری انرجی ختم ہو جاتی تھی, اور پھر یہ ذرا ذرا سی چیزوں کے سہارے لے کے کہ کمر میں تکلیف ہے, گھٹنے میں پرابلم ہے, جھکنے میں مسئلہ ہے, زیادہ دیر کھڑے ہونے میں مسئلہ ہے. تو ہم نے کہا یہ مسائل تو ہوتے ہیں خواتین کو, مردوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں, کبھی بیماری کے بعد بھی ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ رعایت کیوں نہیں یہاں پہ کی جا رہی, کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ عالم برزخ میں رعایت کا مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں کوئی جزا اور سزا کا مسئلہ نہیں ہے, وہ روز محشر ہے. یہاں جو دنیا میں اعمال کیے ہیں اس کے اثرات ہیں, کہ انہیں بہت شوق تھا بیٹھ کے نماز پڑھنے کا, تب یہ بیٹھ جاتی ہیں, انہیں دھکا لگتا ہے ایک طرح سے چلتے ہوئے تو یہ گرتی ہیں اور بیٹھ جاتی ہیں, پھر بیٹھ کے تھوڑا سا چلتی ہیں, پھر کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہیں, پھر بیٹھ جاتی ہیں. یہ جو دنیا کی ان کی اٹھک بیٹھک تھی وہ یہاں پہ عالم برزخ میں ان کو محسوس کرائی جا رہی ہے کہ انہوں نے نماز کے مسائل کو سیکھا نہیں, کہ کہاں پہ ان کو کس طرح سے اپنی نماز پڑھنی تھی. مستحب نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, بالکل شریعت نے اجازت دی تھی کھڑے ہو کے پڑھیں بہت اچھا ہے, ورنہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, نماز صحیح ہے, مگر واجب نماز اور قضا نمازیں اپنی, قضاء عمری کی نماز اور واجب نماز کھڑے ہو کے ہی پڑھنی تھی. اس میں بھی کہ اگر کسی کو جھکنے میں پرابلم ہے, اگر کسی کو سجدے میں جانے میں پرابلم ہے, کسی کو تشہد میں بیٹھنے میں پرابلم ہے, تو ہر چیز کے الگ احکام تھے, انہیں وہ سیکھنے تھے. انہوں نے پوری نماز کا شیپ خراب کر دیا, پوری نماز بیٹھ کے तकबीरातुल एहराम यानी जो नमाज शुरू करने से पहले तकबीर कही जाती है, नियत की जाती है, वो खड़े होके लाजमी करनी होती है, चाहे कोई कितना भी ज़यीफ़ क्यों ना हो। उसे एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए खड़ा होना होता है, लाजमी है ये। मगर इन्होंने नहीं सीखा और इन्होंने तकबीर भी बैठ के कही, नियत भी बैठ के करी, रुकू भी बैठ के, सजदे भी बैठ के, टेबल और चेयर पे। बहुत से ऐसे मसाइल थे कि इन्हें टेबल चेयर की ज़रूरत थी, मगर जहाँ ये ईमानदारी के साथ खड़ी रह सकती हैं। देखें, मयार हमारे दोस्त ने पहले ही बता दिया इल्म ने, कि जब हम मार्केट्स जा सकते हैं, जब हम शादियों में चल फिर सकते हैं, जब हम मॉल्स में घूम सकते हैं, हम घर में घूम फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं, इसका मतलब कि हम खड़े हो सकते हैं। हमें जो पहली रकत, दूसरी रकत, तीसरी, चौथी, जितनी रकत पढ़ रहे हैं, वो खड़े होके उसकी किरत करनी थी। फिर हम ये देखते हैं कि रुकू में हमें कोई प्रॉब्लम है, और रुकू में ज़्यादातर प्रॉब्लम किसी को नहीं होती, तो रुकू प्रॉपर करना था। अब जिन्हें सजदे में प्रॉब्लम होती है, जिनके घुटनों की प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें कुर्सी यूज़ करने की इजाज़त थी कि टेबल पे सजदा करें और कुर्सी पे बैठ के अपनी जो है तशहुद और सलाम पढ़ सकती हैं। फिर दोबारा खड़ी होंगी, किरत वैसे ही करेंगी, रुकू करेंगी। इन्होंने ये मसाइल नहीं सीखे। तो हमने अपने इल्म दोस्त से पूछा कि क्यों नहीं सीखे। कहा इसलिए कि जो इल्म सिखाता था, जो इल्म दे रहा था, वहाँ पे इनकी नाराज़गी होती थी। अब आज हम देखते हैं कि मौजू फिर वैसा ही बनता है, मगर ज़रूरत है वक्त की और इस मौजू के हिसाब से कि कौन बताएगा हमें, मुज्तहिद बताएगा, वो अहले बैत के फरमान से, अहादीस से और कुरान की रोशनी में बताएगा कि किस वक्त क्या मसला है, नमाज को किस तरह पढ़ना है। इन्होंने खेल समझा इसको कि अपनी मर्ज़ी से सारी कज़ाए उम्री बैठ के पढ़ी, अपनी वाजिब नमाजें बैठ के पढ़ी। अब यहाँ पे ये इनके साथ ये मसला है कि ये कभी चल रही हैं, कभी गिर रही हैं, कभी लड़खड़ा रही हैं, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे नमाज को हकीर समझा। और मरहला कितना सख्त है रोज़े महशर के, मौला कह रहे हैं शिफाअती नसीब नहीं होगी। अल्लाह अकबर। अब जो कल हमने अपना मौजू छोड़ा था जहाँ पे, वहीं से हम शुरू करें कि हमारे पास क्योंकि देखें तारीफ़ तो आती है वो सर आँखों पर, बिल्कुल हौसला अफज़ाई होती है, खुदा को भी तारीफ़ पसंद है, मोमिन भी पसंद करता है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। मगर तनकीद जब आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए कि मालूम होता है कि लोग कि किस चीज़ में कन्फ्यूज़ हैं, कहाँ पे उलझ गए हैं, उन्हें कहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है, उन्हें कहाँ पे अपने सवाल का जवाब चाहिए। तनकीद इसलिए बहुत पसंद आती है, इस्पेशली हम समझते हैं हमारे लिए बहुत अच्छी होती है कि हमें लोगों का जहन समझ में आता है कि हमें किस चीज़ पे बात करनी है। हमारे पास एक ये था, तनकीद तो नहीं थी इसमें, मगर एक मैसेज इस तरीके का किसी का था कि भाई आलम बरज़क कुछ नहीं है, खुदा रहीम व करीम है, खुदा गुनाहों को बख्श देता है और आप तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें बस। तो फरिश्ते उन पर भी हंस रहे हैं, उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं कि ये खुदा के साथ मजाक उड़ाते थे, खुदा के साथ मजाक करते थे कि गुनाह कर रहे हैं तौबा कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं तौबा कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। ये इन्होंने क्या खेल बनाया था। अब फरिश्ते हंस रहे हैं कि अब इनकी हालत देखो, खड़े हो रहे हैं, गिर रहे हैं, क्योंकि गुनाह करते थे गिर जाते थे, तौबा करते थे खड़े हो जाते थे, गुनाह करते थे फिर गिर रहे हैं और फिर तौबा की फिर खड़े हो गए। इन्होंने खुदा के साथ मजाक किया, खुदा ने इनको इनके हाल पे छोड़ दिया। खुदा को कोई जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ की, उसे मालूम है कि पलट के बंदे को मेरे पास ही आना है। तो देखें इस चीज़ में ये मौजू आलम बरज़क का यहीं तक अभी, कि बैठ के नमाज़ पढ़ने के मसाइल और खुदा के साथ मजाक करने का किस तरीके से इंसान को वहाँ भुगतना पड़ेगा। एक तो सवारी नहीं मिलेगी, पैदल चलना है। अब ज़रा हम पैदल का सफ़र ख़ुद भी करना चाहेंगे। अब हमने अपने इल्म दोस्त से कहा कि हम भी चाहते हैं कि हम देखें पैदल का सफ़र कैसे होता है। अभी हमने बहुत आराम से सफ़र किया है, अब हम कल ख़ुद भी पैदल चलेंगे, मामलात को देखेंगे कि लोगों के साथ क्या मामलात हो रहे हैं, हमारे क्या मामलात हैं, क्या चेक पोस्ट हैं, क्या घाटियाँ हैं, हम भी चेक करना चाहेंगे। तो समझ में ये आया कि यानी जो भी काम करें आप ईमानदारी से करें, आप एक नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, ख़ुद ईमानदार हो जाएं। जैसे हमने रमज़ान में अपने मौजूआत बनाए थे ना कि एक रोज़ा रखने वाला ख़ुद ईमानदार हो जाए खुदा से कि मैं रख सकती हूँ या नहीं, मैं नमाज में मुझे किस एक्शन में, रुकू में, सजदे में, तशहुद में, किस एक्शन में मुझे तकलीफ़ होती है, मैं ईमानदार हो जाऊँ कि खुदा मुझे इस एक्शन में तकलीफ़ होती है, आलिम से रुजू करूँ, वो बताएं कि मुझे किस तरीके से नमाज़ पढ़नी है। ये खेल नहीं है, ये दीन बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। इमाम हुसैन की बहुत बड़ी कुर्बानी है, इतनी बड़ी कुर्बानी है कि आज हर मुसलमान 5 वक्त का नमाजी है कम से कम, और सबका क़िबला जो है एक ही खाने खुदा है। ये इमाम हुसैन की कुर्बानी है। रमज़ान के रोज़े हर मुसलमान के पास हैं, ये इमाम हुसैन की कुर्बानी का सदक़ा है कि इमाम हुसैन ने नमाज को बचाया कि हर मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ पे आज कायम है, और आज हमने इस नमाज को अपने तरीक़े से, अपने हिसाब से, कहीं नमाज के तरीक़े में, कहीं नमाज में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वहाँ पे, और या फिर किस मजबूरी में खड़े होके पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है वहाँ पे, हमने इसको खेल बना लिया। तो हम देख रहे हैं कि आलम बरज़ख में क्या मसला है। और एक चीज़ मैं ज़िमनन यहाँ बयान कर दूँ कि देखें, उलमाए कराम के क्लिप्स आप भी सुनते होंगे कि सफ़र जो है बड़ा ख़तरनाक है, तो इसीलिए अब हम चाह रहे हैं कि हम भी अब पैदल चलें, थोड़ा ख़तरनाक सफ़र हम भी करें ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि क्या मामलात हैं। ऐसा ना हो कि हम बहुत पुरसकून हो जाएं कि भाई सफ़र बड़ा आसान है, ये तो बहुत अच्छा सफ़र है। यकीनन अच्छे आमाल हैं तो सफ़र अच्छा ही है, मगर हम और भी चीज़ों को समझना चाहेंगे कि अगर अल्लाह ना करे हमने ये मामलात किए होते दुनिया में, तो हम कहाँ कहाँ फंस सकते थे आलम बरज़ख़ में।